हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत रंधावा ने तुम्हें अपने कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उसने तुम्हें बुढ़िया कहा। तब एक एक करके मल्लिका ने जो भी विक्रांत रंधावा ने उसे कहा था वो सारी बातें अमित को बता दी थी। विक्रांत रंधावा के बारे में सुनने के बाद अमित कुछ सोच में पड़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का रिएक्ट करे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने तो सोचा था मालिका वहां जाएगी, विक्रांत रंधावा एक मामूली इंसान है तो उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाएगा, लेकिन ये क्या, यहाँ तो उल्टा ही लेने के देने पड़ गए थे। उल्टा वो मलिक को उल्टा सीधा सुना गया था, साथ साथ उसने उसे बुढ़िया भी कह दिया था। हालांकि उसने बाद में करेक्ट कर दिया था, बुढ़िया की जगह गुड़िया बोल दिया था, लेकिन मल्लिका को तो ये बात दिल पर लग गई थी, इसीलिए मल्लिका ने उसकी जान लेने का फैसला कर लिया था। तभी मल्लिका खुद को रोक नहीं पाई और उसने अमित से कहा था, सर मैंने डिसाइड किया है कि मैं विक्रांत रंधावा की आज रात को जान ले लूंगी। क्या? या? जैसे ही अमित ने सुना उसका शौक के मारे बुरा हाल हो गया था और फिर अगले ही पल वो मुस्कुराने लगा था और बोला था, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी इस विक्रांत रंधावा के बारे में कुछ खास पता नहीं लग पा रहा है। और कहते हैं ना, अगर किसी के बारे में कुछ पता ना चले और तुम्हें ये महसूस हो कि वो तुम्हारे लिए खतरा है, उसे खतरे को ही रास्ते से हटा दो। तो ये तुमने ठीक सोचा, बिल्कुल तुम आज रात को ही उसका काम तमाम कर देना। बाकी मैं सब में देख लूंगा, और डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर अमित मुस्कुराने लगा था और जल्दी ही मल्लिका को उसके केबिन में छोड़कर अपने केबिन में आ गया था। वहीं अमन जल्दी से अपना काम फिनिश करके अपने घर की ओर तारा को लेकर रवाना हो चुका था और उसने विक्रांत रंधावा को अपनी गाड़ी की दूसरी गाड़ी की चाबी दे दी थी और कहा था कि वो ऑफिस वर्क पूरा होने के बाद घर आ जाए। विक्रांत रंधावा का खून पूरी तरह से खौल उठा था, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। तारा पूरी तरह से अमन के कब्जे में थी तो इसीलिए उसे उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अमन तारा को लेकर घर की ओर रवाना हो चुका था क्योंकि करिश्मा जी उनका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने तारा और अमन को एक साथ देखा और तारा को अमन को पकड़े हुए देखा तो वो परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्हें वाकई तारा की चिंता सता रही थी। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि तारा पर किसी भी तरह की कोई आंच आए, इसीलिए करिश्मा जी दौड़कर तारा के पास गई थी। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली थी, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों चल रही हो, आखिर क्या हुआ है? तब अमन ने आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ था वो सब कुछ अपनी माँ से कह दिया था, जिसे सुनकर करिश्मा जी गुस्सा हो गई थी और बोली थी, मैंने मना किया था ना कि आप लोगों को आज ऑफिस नहीं जाना चाहिए और तुम्हें तो खासकर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें आराम करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। तुम जानती हो तुम्हारे पेट में कौन है, तुम्हारे पेट में जिन्नातों का वंशज है, काली शक्तियों का काल है, उसके अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तारा ने करिश्मा जी से कहा था, मैं जानती हूँ मॉम। तारा की बात सुनकर करिश्मा हैरानी से उसे देखने लगी थी और बोली थी, तुम तो एक मामूली इंसान हो, तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानती हो? तब तारा ने बात घुमाते हुए कहा था, वो एक्चुअली जब से मेरे पेट में मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पेट में बच्चा है, तब से मैं अपने आप को काफी ज्यादा स्वस्थ और बिल्कुल ताकतवर सा महसूस करती हूँ। मुझे अब थकावट भी नहीं होती है, मुझे बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल लगता है, हर काम मेरा आसान हो जाता है। भले ही मैं उसे अंधेरे कमरे में थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पकड़े हुए था, कोई मुझे अपने पास खींचे हुए था, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो तो बस थोड़ा सा अंधेरे में घबराने के कारण मैं बेहोश हो गई थी, वरना ऐसा कुछ नहीं था। तारा ने जल्दी से अपना पक्ष क्लियर किया था। तारा के बात सुनकर हैरानी से करिश्मा जी और अमन एक दूसरे को देखने लगे थे और उन्हें वाकई तारा के बात सच भी लगने लगी थी, क्योंकि तारा जो भी कह रही थी वो सच कह रही थी, क्योंकि जो बच्चा था वो पेट से ही तारा की हिफाजत करना शुरू कर सकता था, लेकिन शुरू उसके पैदा होने के ठीक 11 दिनों के बाद ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। उसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी को कहीं से कहीं तक भी दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। काली शक्तियों का मालिक अमित और मल्लिका दोनों ही एक साथ अपने घर पर बैठे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तब मल्लिका ने तो ऑलरेडी अमित को बता दिया था कि वो आज विक्रांत रंधावा को मारने वाली है और विक्रांत रंधावा ऑफिस से निकल चुका है, तो इसीलिए मुझे जाना होगा और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तब अमित ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए कहा था, भला एक मामूली से इंसान के लिए तुम्हें मदद की क्या जरूरत है? उसके लिए तुम ही काफी हो, तुम जाओ और मारो उसे। वैसे भी वो विक्रांत रंधावा मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगता है, एकदम मिस्टीरियस सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास जाने से मुझे किसी भी तरह की कोई घुटन सी महसूस हो रही हो। अमित की बात सुनकर मल्लिका एक बहुत ही खतरनाक हंसी मुस्कुराने लगी थी और जल्दी ही एक काली बिल्ली का रूप लेकर अमन के घर जाने वाले रास्ते पर विक्रांत रंधावा के आने का इंतजार करने लगी थी। उसे पूरा यकीन था विक्रांत रंधावा इसी रास्ते से उसकी ओर जाएगा। वहीं करिश्मा जी ने तारा को काफी ज्यादा सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वो उसे किसी भी तरह से परेशान ना करे, और फिर जल्दी ही करिश्मा जी ने तारा को उसके कमरे में लिटा दिया था और आराम करने के लिए कह दिया था कि उसे किसी भी तरह का अपने आप पर जोर नहीं डालना है। तारा ने करिश्मा जी की बात अच्छी तरह से समझ ली थी और वो जल्दी ही अपने कमरे में आराम करने लगी थी। तभी अमन भी उसके पास आ गया था। वो तारा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था और जल्दी ही वो उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया था। तारा ने अमन से कहा था, क्या हुआ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? अमन तारा को नहीं बता सकता था कि वो उस चोर के मर्डर को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब काली शक्तियों का टारगेट उसकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ तारा थी, और वही तारा इस बात को सोच रही थी कि अब उस राक्षस का टारगेट कोई और नहीं बल्कि उसका पति अमन सिंह राठौर था। क्योंकि ये बात सच थी, तारा को तो यकीन ही हो गया था कि जो उस चोर को किसी और ने नहीं बल्कि उस राक्षस के अंश ने ही मारा होगा। तारा को इस बात का यकीन हो गया था। वो सोचने लगी थी कि अब उसका टारगेट जरूर अमन हो सकता है। अब दोनों में से किसका डर सच्चा था, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। दोनों में से तारा का डर बिल्कुल सच था, क्योंकि विक्रांत रंधावा उसके पति के पीछे मौत बनकर बढ़ रहा था। विक्रांत रंधावा ने अमन की जान लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन उससे पहले वो तारा और अमन के बीच में कुछ गलत फहमी पैदा करवाना चाहता था, ताकि तारा के मन से अमन का प्यार थोड़ा कम हो सके। क्योंकि जब तक तारा के दिल से अमन का प्यार कम नहीं होगा, तब तक वो तारा के जिस्म को हासिल नहीं कर सकता था। तो इसीलिए विक्रांत रंधावा को सबसे पहले तारा के मन में से निकलना होगा,
उसी के बाद वो तारा को अपना बना सकता था। विक्रांत रंधावा कुछ सोचकर अमन की गाड़ी लेकर उसके घर की ओर रवाना हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुंचा, एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता रोक लिया था। उस काली बिल्ली को देखते ही विक्रांत रंधावा को समझते हुए देर नहीं लगी थी कि वो काली बिल्ली कोई और नहीं बल्कि मल्लिका ही थी। उसकी पहचान को अच्छी तरह से समझ पा रहा था। विक्रांत ने गाड़ी रोक दी थी। जल्दी ही वो काली बिल्ली विक्रांत के गाड़ी के शीशे के ऊपर चढ़ गई थी और उसे अपने बड़े बड़े दांत उसकी ओर दिखाने लगी थी। विक्रांत पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो तो बस आराम से बैठकर उसे बिल्ली का नाटक देख रहा था। वो देखना चाहता था कि आखिर ये बिल्ली अब क्या करने वाली है। तभी एक ही झटके में मल्लिका ने, जो कि काली बिल्ली के रूप में थी, उसने विक्रांत की गाड़ी का जो आगे वाला फ्रंट शीशा था अपने पंजों से उसे तोड़ डाला था। विक्रांत पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। मल्लिका ये देखकर हैरान थी, क्योंकि अभी तक कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो दौड़कर गाड़ी से निकलकर भाग चुका होता, लेकिन विक्रांत तो आराम से हाथ पैर हाथ रखे हुए बैठा हुआ उस बिल्ली की ओर ही देख रहा था। उसके बाद वो बिल्ली शीशा तोड़ने के बाद उसकी ओर झपटने से लगी थी, शीशे के अंदर से। तब विक्रांत ने कुछ सोचकर गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बिल्ली के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी ओर देखने लगा था। तब मल्लिका ने ज्यादा देर ना करते हुए अपने निकले दांतों को बाहर निकाल लिया था, और जैसे ही वो विक्रांत पर हमला करने के लिए झपटी, विक्रांत ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली थी। मल्लिका इस एक्शन के लिए रेडी नहीं थी, और एकदम से ही मल्लिका की बिल्ली वाली गर्दन विक्रांत के हाथों में थी। अगर उस वक्त विक्रांत उस गर्दन को बुरी तरह से मरोड़ देता तो उसे वक्त उसे बिल्ली के साथ साथ मल्लिका की भी जान जा सकती थी। मल्लिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी। विक्रांत की शक्तिशाली मजबूत बाजुओं से वो बच नहीं पा रही थी। उसने अपनी कितनी ही नाकाम कोशिश कर ली थी, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पा रही थी। और जब मल्लिका को लगा कि अब उसकी सांसें ही चली जाएगी, तब अचानक विक्रांत के गला दबाए दबाए ही मल्लिका अपने असली रूप में आ गई थी। धन्यवाद, धन्यवाद, चरण स्पर्श, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।